شكرا شكرا، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. سورة ياسين کی آیات نمبر 45 سے 46 تک 47 تک ابھی ہم نے تلاوت کری، تو اس سے پہلے کا جو درس ہے وہ کل تک مکمل ہو گیا تھا. تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پھر کفار کا تذکرہ کرتے ہوئے، جو نہ ماننے والے ہوتے ہیں، ڈینائی کرنے والے، ریجیکٹ کرنے والے کافر، کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے، اتقوا ما بین ایدیکم، کہ تم ڈرو اس سے جو کہ تمہارے سامنے ہے. بین ایدیکم، ایدی ید کی جمع ہے، ید ہاتھ کو کہتے ہیں. تو انسان کے نا دو ہاتھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو دونوں ہاتھوں کی جو ڈائریکشن ہے اللہ تعالیٰ نے وہ آگے کی طرف بنائی ہے. ہمارے ہاتھ جو ہیں، انسانوں کے ہاتھ پیچھے کی طرف نہیں جاتے، آگے کی طرف جاتے ہیں. پیچھے سے ہم کچھ اٹھانا بہت ہی زیادہ تکلیف کے ساتھ اٹھانا پڑے گا، دونوں کو ایک ساتھ ہم پیچھے کر بھی نہیں سکتے. تو ہاتھ سامنے کی طرف ہوتے ہیں، تو دونوں ہاتھوں کے درمیان جو جگہ بنتی ہے نا، وہ سامنے کی جگہ بنتی ہے. اس وجہ سے عربی زبان کے اندر سامنے کے لیے بین ایدیکم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کہ تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان جو ہے، ٹھیک ہے، یعنی واٹ از ان فرنٹ آف یو، یا واٹ از فیسنگ یو، ٹھیک ہے، یا کیا چیز تمہارا انتظار کر رہی ہے، ان سب معنوں کے لیے بین ایدیکم کا استعمال کیا جاتا ہے. وما خلفکم، اور جو تم پیچھے چھوڑے جاتے ہو، خلف پیچھے وہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو چیز تمہارے بیہائنڈ میں ہے، بیک میں ہے. کیا مطلب؟ کہ جو تم کر چکے ہو پاسٹ میں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں سے مخاطب ہو کر، یا کافروں کے بارے میں فرماتے ہیں، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ڈرو اس چیز کو جو تمہیں آگے آنے والی ہے، یعنی عذاب، ٹھیک ہے، تمہیں جو عذاب پہنچنے والا ہے، تمہیں اس سے ڈرنا چاہیے. اور جو تمہارے پیچھے ہے، تو پیچھے سے یہاں پر مراد جو مفسرین نے لکھی ہے نا، وہ ہے جو کہ مرے پیچھے سے مراد. کیا مطلب؟ کہ جب تم مر جاؤ گے نا، تو تمہاری موت کے پیچھے، ٹھیک ہے، ان ون وے ہم اس کو موت کے آگے بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ موت کے پیچھے. کیا مطلب؟ موت کے بعد جو تمہارے لیے پیش آنے والا ہے. لعلکم ترحمون، تاکہ شاید کہ تم پر رحم ہو. لعل کا ترجمہ شاید سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر دو قسم کے عذابوں کی بات ہو رہی ہے کافروں کے اوپر. ایک وہ عذاب جو کہ دنیا کی زندگی میں ان پر آنے والا ہے، ٹھیک ہے. یہ کون سا عذاب ہوتا ہے جو کافروں کے اوپر دنیا کی زندگی میں آنے والا ہے، ٹھیک ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مرنے کے بعد ہی عذاب ہوگا. کسی شاعر نے بہت خوبصورت الفاظ میں اس کو بیان کیا کہ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے، ٹھیک ہے. تو گناہوں کی سزا ہمیں زندگی میں ملنی شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. مَن یَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، کہ جو بھی گناہ کرتا ہے اس کو اس کی جزا ضرور بالضرور ملتی ہے. تو گناہوں کی نحوست، بے برکتی، گناہوں کی وجہ سے جو ذلت اور رسوائی ہمیں मिलती है ना, वो हमें इस दुनिया की ही जिंदगी से मिलनी शुरू हो जाती है। लेकिन जो बहुत ज्यादा गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं ना, बहुत ज्यादा, ठीक है, तो उनके साथ मामला फिर ये हो जाता है कि उनके यानी जो दिल होते हैं वो तारीक हो जाते हैं, ठीक है, दिलों के ऊपर गुनाहों की जो लेयर चढ़ती है ना, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान एक गुनाह करता है तो एक काला नुक्ता उसके दिल के ऊपर लग जाता है, अगर वो तौबा कर ले तो वो धुल जाएगा, लेकिन अगर तौबा नहीं करे तो नुक्ता रहेगा, फिर दूसरा गुनाह तो दूसरा नुक्ता, तीसरा गुनाह तो तीसरा नुक्ता, ठीक है, ये नुक्ते पड़ते रहते हैं हत्ता के ये पूरी सरफेस को डार्कन कर देते हैं, इसको कहते हैं दिल का स्याह हो जाना। तो दिल की तारीकी की एक अलामत ये होती है कि इंसान को नेकियां बुरी लगने लगती हैं, मुश्किल लगने लगती हैं, और गुनाह जो है ना उनकी झिझक खत्म हो जाती है। अब गुनाह के काम जो होते हैं वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और ये यानी झिझकता भी नहीं है, ये ठहरता भी नहीं है, इसको एहसास भी नहीं होता कि मैं क्या करने वाला हूँ। उसी तरीके से जो इसको नसीहत करे तो इसको नसीहत बहुत बुरी लगती है कि इन्होंने मुझसे क्यों ऐसी बात करी, इन्होंने क्यों ऐसे मुझे कहा। ये नसीहत करने के लिए जो आता है खैरख्वाही कर रहा होता है कि भाई अल्लाह और उसके रसूल ने जो बातें कही हैं, जो हमारे मशायख और उलमा हमें समझाते हैं, तो हम वो काम कर लें, इसमें हमारा फायदा है दुनिया का भी और आखिरत का भी, लेकिन उसको नसीहत बुरी लगती है। तो दिल की तारीकी का ये जो दिल की तारीकी होती है ना, ये दरअसल हमारे गुनाहों की सजा है जो कि इस दुनिया की जिंदगी में हमें मिलनी शुरू हो गई। अब जितने हम गुनाह करेंगे तो ये तारीकी बढ़ती चली जाएगी, नसीहत हमें मजीद बुरी लगती चली जाएगी, और गुनाह का रास्ता हमारे लिए हमवार होता चला जाएगा, नेकी करनी हमारे लिए मुश्किल होती चली जाएगी। तो इसकी वजह से हमें बहुत मुख्तलिफ किस्म के रूहानी, जिस्मानी और मुआशरती नुकसानात इस दुनिया की जिंदगी में पहुंचने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा ये अंधा हो जाता है, दिल का अंधा, कि इसको वो नुकसान नजर नहीं आ रहे होते, लेकिन नजर न आने की वजह से ये नहीं होता कि नुकसान पहुंच नहीं रहे। अगर आप कोहे हिमालय के सामने खड़े हो, माउंट एवरेस्ट के सामने खड़े हो और अपनी आंखें बंद कर लें, तो उसका मतलब क्या होगा कि माउंट एवरेस्ट वहां पर है नहीं? माउंट एवरेस्ट तो है, आपने अपनी आंखें बंद कर ली है तो आपको बेशक नजर नहीं आ रहा, लेकिन है तो सही ना वहां पर। उसी तरीके से गुनाहों के जो असरात होते हैं हमारी जिंदगियों में आ रहे होते हैं, लेकिन दिल की तारीकी की वजह से हम ऐसे अंधे हो जाते हैं कि हम उनको तस्लीम नहीं कर रहे होते, हम उनको मान नहीं रहे होते। अगला बंदा हमें नसीहत कर रहा होता है कि भाई आप गुनाहों को तर्क कर दें, नेकी की जिंदगी इख्तियार कर लें, अल्लाह ताला जिंदगी में आसानियां पैदा कर देंगे, और आगे से ये जवाब क्या देता है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, ये तो मेरी किस्मत का लिखा हुआ है, ऐसी ऐसी बातें करता है, गुनाहों से तौबा करने पे आमादा ही नहीं होता, हालांकि उसकी जिंदगी में जितनी परेशानियां हैं वो उसके अपने गुनाहों की वजह से आ रही होती हैं। तो ये दुनिया का अजाब होता है। अल्लाह ताला मा बैना अईदीकुम से इस अजाब की बात कर रहे हैं, वमा खल्फकुम कि तुम्हारी मौत के पीछे जो तुम्हारे पास जो तुम्हारे ऊपर आखिरत में अजाब आने वाला है अगली जिंदगी में। और ये अजाब क्या होता है जो कि इंसान की कब्र से शुरू हो जाता है, बल्कि मौत के वक्त से ही शुरू हो जाता है। ये मौत के वक्त जब मलकुल मौत आकर के उसकी जान निकालते हैं तो जो काफिर और फाजिर फासिक होता है तो उसकी जान जो है वो उसके बदन में से निकलना ही नहीं चाहती है, वो बदन में छुपने की कोशिश करती है। तो इस वजह से मलकुल मौत को, इस जान को यानी रूह को, उसके बदन में से सख्ती के साथ खींच के निकालना पड़ता है, और ये जो खींच के निकालना होता है इसकी वजह से उसको रूहानी तौर पर शदीद तकलीफ होती है, बहुत मुश्किल होता है उसकी जान इसके बदन से निकलना। तो यहीं से उसकी तकलीफ शुरू हो जाती है, और फिर वो जो फरिश्ते आते हैं तो वो इसके लिए जहन्नुम से इसका कफन लेकर के आते हैं। ये वो कफन नहीं होता जो कि इंसानों ने इसको पहनाना होता है, ये जहन्नुम का कफन होता है। इसको वो कफन नजर आता है, इसको जो है वो अपना मुकाम भी जहन्नुम में नजर आना शुरू हो जाता है। तो इसका अजाब जो है वो मौत के फौरन बाद से शुरू हो जाता है, फिर उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने पेश किया जाता है, सातवें आसमान के ऊपर ले जा करके इस यानी इसकी रूह को आसमानों बल्कि आसमान तक ले जाया जाता है। इसके लिए आसमान के दरवाजे खुलते ही नहीं है, और वैसे ही अल्लाह ताला हुक्म फरमा देते हैं कि इसको इसकी कब्र के अंदर पटख दो। तो ये एक अजाब की शक्ल, ये मौत के बाद वाला अजाब। फिर उसके बाद कबर में जाता है, कबर के अंदर इसके ऊपर अजाब शुरू हो जाता है। सही हदीसें बड़ी तादाद में मौजूद हैं और कुरान की आयात भी इसके ऊपर शाहिद हैं कि कबर के अंदर अजाब होता है। जैसे कि फिरौन को कुरान फरमाता है कि फिरौन को अजाब अभी हो रहा है और फिर क़यामत के दिन दूसरा अजाब होगा। तो वो आयत जो है वो कुरानी दलील है कबर के अजाब के ऊपर। आगे एक और आयत आ रही है सूरह यासीन में, जिसको कुछ ना समझ लोग जो हैं वो ऐसे समझते हैं कि कबर का अजाब की नफी कर रही है वो आयत, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो भी कबर के अजाब की नफी नहीं कर रही, और वो फिरौन वाली जो आयत है वो तो कबर के अजाब की को मुदल्लिल कर रही है, मुदल्लिल कर रही है, उसको दलील दे रही है उसके ऊपर। तो ये मौत के बाद वाला अजाब होता है। तो अगर डर जाए बंदा, डर जाए, तो अल्लाह ताला रहीम और करीम है, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ कर देते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं लअल्लकुम तुरहमून, कि शायद कि तुम्हारे ऊपर रहम कर दिया जाए अगर तुम डरो। क़ील लहुम तक़ू, कि अगर तुम डर जाओ तो तुम पर रहम कर दिया जाए। वमा तातीहिम मिन आयतिम मिन आयात रब्बिहिम, और कोई हुक्म या आयत, आयत के अंदर अल्लाह ताला की निशानियां होती हैं और अल्लाह ताला के अहकामात भी होते हैं। तो इस वजह से लफ्ज़ आयत को निशानी के तौर पर भी ट्रांसलेट किया जाता है। जैसे पिछली जो हमने आयत पढ़ी थी कल, सूरज, चांद, ज़मीन की तख्लीक और सवारियों की तख्लीक और जो ज़मीन में से मेवे निकलते हैं उनकी तख्लीक, वो सब क्या थी, वो निशानियाँ थी, पॉइंटर्स थे अल्लाह ताला की तरफ, ठीक है। लेकिन आयात के अंदर वो भी आयात होती हैं कुरान की जिनके अंदर अहकामात होते हैं। तो यहाँ पर आयत का तर्जुमा हुक्म से किया कि कोई हुक्म नहीं पहुँचता उनको मिन आयात रब्बिहिम, अल्लाह ताला के हुक्मों में से, ठीक है, ये अल्लाह ताला की आयात में से कोई हुक्म नहीं पहुँचता उनको, इल्ला कानू अन्हा मुअरिज़ीन, सिवाय इसके कि वो उनसे एराज़ करने वाले हैं। एराज़ करने का मतलब क्या होता है कि कान ना धरना। एक हिदायत कैसे मिलती है, अपनी अकल को गौर व तदब्बर के लिए इस्तेमाल करना और रसूलों और रसूलों के रसूलों की बातों पर कान धरना। इन दो ज़राए से इंसान को हिदायत मिलती है, अपनी अकल इस्तेमाल करना और रसूलों की बात पर कान धरना, इससे हिदायत मिलती है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिपीट भी थोड़ा सा करना है, और आपसे अभी तक बयान नहीं भी हुआ इस क्लास में, वो ये कि जो हमने पिछली क्लास में बात करी थी कि अफरात और तफरीत से हमने बच के रहना है हिदायत के मामले में, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने इस हिदायत का सबब कौन, किसको बनाया है, इस हिदायत का जो सबब है ना, अल्लाह ताला ने वो इंसानों को बनाया, ठीक है, रसूलों को हिदायत के पैगाम के साथ भेजा इस दुनिया के अंदर, ठीक है। अब उनके मामले में हमें अफरात और तफरीत से बचना है। अफरात क्या चीज़ हो सकती है, या हाँ अफरात क्या चीज़ हो सकती है कि उन्हीं को सब कुछ समझ लेना, उन्हीं को खुदा का दर्जा दे देना, ठीक है, और खुदा से जो है वो बेतवज्जो हो जाना, खुदा की नाफरमानी शुरू कर देना, ठीक है, ये होती है अफराद, यानी उनको माबूद बना लेना, इन इंसानों को जो असबाब हिदायत हैं उनको माबूद बना लेना, ठीक है। और तफरीत क्या होती है कि उनसे बिल्कुल ही बेतवज्जो हो जाना और इनका इनकार कर देना कि जी हमें कोई रसूलों की जरूरत नहीं है। एक किस किस्म के रसूल आ गए हैं कि ये जो है वो यमशीफिल अस्वाक बाजार में चलते, ये काफिर ही कहते थे ना, ये माल हाजर रसूल या अकुलून ताम व यमशीफिल अस्वाक, ये किस किस्म का रसूल है कि ये खाना भी खाता है और बाजारों में भी चलता है, ठीक है। तो ये तो कोई रसूल कहलाने के काबिल नहीं है। हम भी उसी तरह की बातें कहते हैं कि भाई ये इंसान के, इनकी हम बात क्यों माने, ये तो हमारे जैसे इंसान है। जैसे कि वो पीछे जो वाकया गुजरा है उसमें भी लोगों ने ये कहा था तुम हमारे जैसे आदमी हो, ठीक है, तो बिल्कुल उनको डिनाई कर देना। तो इनके दरमियान का रास्ता क्या है कि इनको जो है वो हिदायत के सबक के तौर पर इस्तेमाल करना और इनसे जो है वो सीख करके आगे चलना। अब इस पे सवाल ये पैदा होता है कि जो अकल अल्लाह ताला ने हमें दी है, तो उस अकल के बलबूते पे हम हिदायत क्यों नहीं हासिल कर सकते, क्यों रसूलों की ज़रूरत है हमें, अकल के बलबूते पे क्यों हम खाली हिदायत हासिल नहीं कर सकते, इसका अगर आप में से कोई जवाब दे, महज अकल क्यों काफ़ी नहीं है, कोई वजह इसकी, अकली वजह, अकल की ज़रूरत, अकल के काफ़ी ना होने की भी कोई अकली वजह क्या है, उलमा, मशायख, रसूल, इन सब की जरूरत क्यों है? इनसे हम मुस्तगनी क्यों नहीं हो सकते? अकल तो अल्लाह ताला ने दी है, तो फकत अकल की बुनियाद पर हिदायत क्यों नहीं मिलती? कैसे नहीं मिल सकती? क्या वजह है उसकी? जी माशाल्लाह इतने सारे तालिब इल्म, तालिबात, पुराने भी नए भी, किसी के पास तो जवाब होगा। जी, अकल गुमराह कर सकती है। क्यों भाई, अकल आपको गुमराह क्यों करेगी? अकल तो आपके अपने वजूद का हिस्सा है ना। अकल आपके लिए बुराई का फैसला क्यों करेगी? कोई अपने लिए बुराई का फैसला करता है? अल्लाह ने नबी ना भेजे होते वरना, वो तो चले ठीक है कि वरना अल्लाह ने नबी ना भेजे होते, लेकिन उसकी कोई एक्सप्लेनेशन भी होनी चाहिए ना। अकल नफ्स के करीब है? नहीं, अकल कोई नफ्स के करीब नहीं है। ये अल्लाह ताला की सुन्नत है, किसी का वास्ता ज़रूरी है। अच्छा, नहीं जी, ये भी जवाब मुनासिब नहीं है, क्योंकि जिसका शेख नहीं होता उसका शेख शायद। जो हमें सही लगता है हम उसी के मुताबिक काम करते हैं। ठीक है, जो आपने वो बात करी है ऊपर शेख वाली, तो उसमें आप थोड़ा थोड़ा पहुंच तो गई हैं, लेकिन आगे बात करें, हमारे अकल नाकस है। ठीक है ना, हमारी अकल नाकस है। क्यों नाकस है? अकल अपने मवाफिक फैसले लेती है, तो मवाफिक फैसले तो फिर हमारे खिलाफ नहीं होने चाहिए ना, हमारे हक में होने चाहिए ना। अकल से हम वही समझ सकते हैं जो नजर आए, अल्लाह ताला नजर नहीं आते। अच्छा जवाब है, यही अल्लाह की सुन्नत है, चाहे वो सही हो या गलत हो। अकल महदूद है, ठीक है, अकल नाकिस है। खवातीन ने जवाब दिया, अकल महदूद है, ये भी नाकिस ही की एक शक्ल है। अकल को अच्छे बुरे का पता नहीं होता। अकल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वसाविस एंड नफ्स। और वो जो आपका माशाल्लाह वो जो दोस्त साहब बैठे हुए हैं, वसाविस, हाँ वसाविस जो है वो शैतान डालता है। ठीक है, तो अकल जो होती है ना वो अंडर इन्फ्लुएंस होती है। एक तो ये कि वो महदूद होती है, उसके पास इल्म तो नहीं होता ना। अकल के पास वो तो जो चीज देख रही है, जो जैसा उसको नजर आ रहा है, वैसे ही उसको ऑन द सरफेस, क्या कहते हैं, सुपरफिशियली, राइट? वो तो सुपरफिशियली चीजों को देखती है ना, उसको चीजों की गहराई तो नजर नहीं आ रही होती। ठीक है, वो तो ऊपर ऊपर से चीजों को देख रही होती है। तो अकल के पास जो इल्म होता है ना, ये बहुत महदूद होता है। उसकी आंखों और कानों की बुनियाद पर उसका इल्म होता है। आंखों से उसको इल्म हासिल होता है और कानों से उसको इल्म हासिल होता है। यही दो वास्ते हैं इल्म हासिल होने के। ठीक है, तो आंखें खराब भी हो सकती हैं, आंखों को धोखा भी लग सकता है, कान भी जो है उनको भी धोखा लग सकता है, झूठ भी जो है वो कान सुन करके उसको सच समझ सकते हैं। ठीक है, तो अकल जो है वो नाकिस और महदूद होती है, और इसके ऊपर और भी चीजों का इन्फ्लुएंस होता है। वो चीजें क्या होती हैं? इंसान का माहौल, इंसान जिस घर में प्रवेश पाता है, राइट, जिन लोगों के दरमियान उठता बैठता है, ये सारी चीजें उसकी माहौलियात कहलाती हैं। अकल इन सारी चीजों से इन्फ्लुएंस होती है। ठीक है, तो इस वजह से जो अकल का फैसला होता है ना, वो यानी सही फैसला नहीं होता, वो अक्सर औकात जो होता है वो गलत फैसला हो जाता है। ठीक है, वो नताइज जो है ना जो अखज करती है वो नताइज गलत हो जाते हैं। ठीक है, और फिर जो सबसे ज्यादा उसके ऊपर नेगेटिव इन्फ्लुएंस करने वाली चीज होती है वो उसका अपना नफ्स, जो कि अपनी ख्वाहिशात की पैरवी चाहता है, उसको अपने वजूद से वफादारी नहीं है। नफ्स एक ऐसी चीज है जो कि इवन अपने वजूद से वफादार नहीं है, ये बागी होता है। ठीक है, अपने वजूद में होता है यानी मुल्क के अंदर रहता है जैसे, लेकिन बागी जो लोग होते हैं मुल्क के, वो मुल्क के अंदर ही रहते हैं ना, लेकिन वो मुल्क से वफादार नहीं होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हमारा नफ्स हमारे अंदर रहता है, लेकिन फिर भी वो हमसे वफादार नहीं होता। अकल का ये मामला नहीं है। अकल बेवफा नहीं होती, अकल बेवकूफ होती है। बेवकूफ होना एक अलग चीज है, बेवफा होना एक अलग चीज है। नफ्स बेवफा होता है, अकल बेवकूफ होती है। ठीक है, तो इस वजह से ना अकल के ऊपर नफ्स और शैतान ये दोनों असरअंदाज भी होते हैं, और हमारा माहौल वगैरह भी असरअंदाज होता है। ठीक है, तो इस वजह से इन सारी चीजों के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए, نگیٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں والا سسٹم بنایا ہے. کیونکہ رسول جو بات آ کر کے ہمیں بتاتے ہیں, یعنی ہماری عقل میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کانوں کے ذریعے سے, آنکھوں کے ذریعے سے ہماری عقل میں جو بات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں رسول, یہ بات جو ہوتی ہے 100% درست ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. رسول جھوٹ نہیں بولتے, رسول دھوکہ نہیں دیتے. اس وجہ سے محض عقل کو استعمال کر کے ہم ہدایت نہیں پا سکتے, ہم رسولوں کے محتاج بنائے گئے ہیں, ٹھیک ہے. اور جہاں تک یہ بات ہوئی کہ اللہ کی ڈائریکٹ مانے, رائٹ, تو بھائی اللہ تعالیٰ کی تو آواز نہ ہمیں آتی ہے نہ کسی اور کو آتی ہے. آپ میں سے کسی کو آتی ہو تو بتا دیں, ہم آپ کو اس کلاس سے ایکسکیوز کر دیں گے, کیونکہ اس کلاس میں ان لوگوں کی ضرورت ہی نہیں ہے جن کو اللہ کی آواز آتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو پھر وہ تو بلکہ پڑھانے کے قابل ہیں, وہ پڑھنے کے قابل تو نہیں ہے. یا جن کو رسول کی آواز آتی ہے, ہم تو وہ لوگ ہیں جن کو رسول کی بھی آواز نہیں آتی. ہم نے تو رسول کو بھی نہیں دیکھا, نہ ہماری آنکھوں نے دیکھا, نہ ہمارے کانوں نے رسول کو سنا, ٹھیک ہے. تو اگر آپ میں سے کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی ہدایات لیتا ہو تو پھر اس کو بھی کلاس لینے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو بھائی ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جن کو کہ نہ تو اللہ نظر آتا ہے نہ رسول نظر آتے ہیں, تو ہم تو علماء اور مشائخ کے محتاج ہیں جن کو رسولوں کے رسول کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے عقل جو ہے وہ گائیڈ کرنے کے لیے کافی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اب جو ہے نا باقی آپ نے کیا پوائنٹ لکھا تھا وہی پڑھ لیتے ہیں کہ عقل حصول علم اور تقویٰ سے بڑھتی ہے, اور تقویٰ بغیر رہنمائی کے نہیں صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے. نفس کا اثر عقل پر ہوتا ہے, نفس کی اصلاح ہوگی تو عقل صحیح فیصلہ کرے گا. جی, نفس کی اصلاح ہوگی, یعنی نفس جو ہے نا جب عقل کو انفلوئنس کرنا چھوڑ دے گا تو پھر کیا ہوگا, پھر دل نفس دل جو ہے وہ عقل کو انفلوئنس کرے گا, اور دل وفادار ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہ نا یہ الفاظ اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں, نفس بے وفا ہے, عقل بے وقوف ہے, اور دل وفادار ہے. یہ تینوں چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو آیات ان تک پہنچتی ہیں نا, تو کوئی ایسی آیت نہیں ہوتی کہ جس سے کہ انہوں نے اعراض نہ کیا ہو, ٹھیک ہے, اس کو ٹالا نہ ہو, اس سے جو ہے وہ منہ نہ موڑا ہو. تو لوگ آ کر کے ان کو بتاتے ہیں تو کان دھرنے کی بجائے, جو اللہ کے بندے ان کے پاس آ کر کے ان کو نصیحت کرتے ہیں, کان دھرنے کی بجائے یہ اعراض کرتے ہیں. تو اعراض کرنے والوں کو معرضین کہا جاتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم خرچ کرو, انفق ينفقو کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا, یعنی مما رزقکم اللہ, اس میں سے خرچ کرو جو تمہیں اللہ نے دیا ہے. کیا مطلب کہ ہمارے پاس جو بھی مال ہے, جو بھی صلاحیتیں ہیں, حتیٰ کہ جو بھی توفیقیں ہیں, یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے. یہ سب کا سب جو ہے وہ ہمارا رزق ہے, یہ سب کا سب ہمارا رزق ہے جو کہ اللہ سے ہمیں ملتا ہے. ہم اللہ کے بغیر یہ رزق نہیں حاصل کر سکتے کہ کچھ رزق ہم اللہ سے حاصل کریں اور کچھ جو ہے وہ ہم کہیں اور سے حاصل کر لیں. ایسا کوئی رزق نہیں ہوتا جو اللہ کے بغیر کہیں سے حاصل کیا جائے. تو جو کچھ ہمارے پاس ہے سب اللہ کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ نا بار بار قرآن کے اندر ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ انفقوا مما رزقکم اللہ, کہ تم سے میں وہ چیز خرچ کرنے کو نہیں کہہ رہا جو کہ تم نے اپنے طور پہ حاصل کری ہو, میں تو تم سے صرف وہ چیز خرچ کرنے کو کہہ رہا ہوں جو کہ میں نے ہی تمہیں دی ہے, میری ہی تمہیں دی ہوئی ہے, رائٹ, تمہاری اپنی کوئی تھوڑی ہے, میں نے کچھ دن کے لیے تمہیں دے دیا ہے اس دنیا کی زندگی کے لیے, رائٹ, تو اس میں سے خرچ کرو. تو انفاق فی سبیل اللہ کا نام لفظ آپ نے سنا ہوگا, انفاق فی سبیل اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. تو اس آیت کے اندر فرما رہے ہیں کہ مسلمان جو ہے نا, یہ مسلمان جو ہے یہ نصیحت کرنے والا ہوتا ہے, کیونکہ الدین النصیحہ, مسلمان کے رسول نے اس کو یہ بات بتلا دی ہے کہ دین تو سراسر خیر خواہی ہے. تو جب یہ اپنے ساتھ رہنے والوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے دوستوں کو گمراہی کے راستے پر چلتا ہوا دیکھتا ہے نا, تو یہ چپ نہیں رہ سکتا, یہ خاموش نہیں رہ سکتا, یہ اپنے آپ میں مگن نہیں رہ سکتا, یہ ان کی خیر خواہی کرتا ہے. اور یہ خیر خواہی جو ہے کبھی یہ زبان سے کرتا ہے اور کبھی یہ زبان کے بغیر کرتا ہے, जुबान के बगैर भी खैर ख्वाही हो सकती है, कैसे? दुआ करने से। तो ये दुआएं तो फौरन शुरू कर देता है, और फिर मौका मिलने के ऊपर ये फिर जुबान से भी उनकी खैर ख्वाही करता है कि उनको फिर अच्छी बातें बताता है, बुरी बातों से रोकने की कोशिश करता है। तो इसी को अल्लाह ताला यहां पर तस्वीर कशी कर रहे हैं कि जब ये ईमान वाले होते हैं ना, ये अपने साथ रहने वाले काफिरों की खैर ख्वाही करते हैं, तो उनसे कहते हैं कि भाई तुम्हें जो अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं, तुम इनमें से अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, भाई खैर ख्वाही करते हैं, नसीहत करते हैं, चुप नहीं बैठते, अपने काम से काम नहीं रखते, बल्कि बात भी करते हैं उनसे जाकर के। तो ये काफिर क्या जवाब देते हैं? قال الذين كفروا, ये कुफर करने वाले ये कहते हैं, للذين آمنوا, ईमान वालों से जो उनके साथ खैर ख्वाही करके इनको अच्छे मशवरे दे रहे थे, नसीहतें कर रहे थे, उनको ये कहते हैं, अनुतइमु मन लौ यशा अल्लाह अतमहु, कि जिन लोगों को अल्लाह ताला ने खाना नहीं खिलाया, या अल्लाह ताला जिनको चाहे वो खाना खिला सकता है, तो तुम चाहते हो कि हम उनको खाना खिलाएं। क्यों ये बात करते हैं? दो रीजंस। एक तो ये मजाक उड़ाने की, ठीक है ना, मजाक उड़ाने की नीयत से बात करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने पहले क्या फरमाया था, या हसरतन अलल इबाद मा यातीहिम मिर रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, ठीक है, कि बंदों के ऊपर हसरत है कि जो इनके पास रसूल आता है, इन्होंने हर रसूल का मजाक उड़ाया। तो जो बिला वास्ता रसूल आते हैं, डायरेक्ट अल्लाह की तरफ से अपॉइंटेड पैगंबर जो होते हैं, उनका भी मजाक उड़ाया जाता है, और जो उनके भेजे हुए रसूल होते हैं उनका भी मजाक उड़ाया जाता है, यानी ईमान वाले सहाबाए कराम, राइट, या दूसरे बाद में आने वाले ईमान वाले जो होते हैं, जो कि रसूलों का काम अपने लिए अपने जिम्मे लेते हैं, राइट, दावत और तबलीग का काम करते हैं, चाहे किसी सूरत से करते हो, तो उनका भी मजाक उड़ाया जाता है। तो ये एक नीयत क्या होती है इनकी, कि ईमान वालों का मजाक उड़ाया जाए। तो मजाक उड़ाते हैं किस तरीके से, कहते हैं कि भाई तुम लोग तो कहते हो कि अल्लाह राजिक है, अल्लाह ताला रिस्क देता है, और अब तुम हमें ये कह रहे हो कि हम रिस्क दें उन लोगों को, हम रिस्क दें, ठीक है, तो ये क्या बात हुई, राइट, कि भाई या तो अल्लाह ताला रिस्क देता है, या फिर जो है वो तुम हमें रिस्क देने के लिए कह रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से ना वो ईमान वालों का मजाक उड़ाते थे, हालांकि इन लोगों को ये बात मालूम थी कि अल्लाह ताला ही राजिक है। ये जो काफिर हैं, जैसे पहले भी बात हो चुकी है, ये काफिर अल्लाह ताला की रज़ाकियत का इनकार नहीं करते थे, अल्लाह ताला की के खालिक होने का इनकार ये काफिर भी नहीं करते थे, राइट, ये काफिर अल्लाह ताला को खालिक और राजिक मानते थे, लेकिन चूंकि इनका मजाक उड़ाने का मूड होता था मोमिनीन की, तो इस वजह से ना मोमिनीन की कही भी बातों को उनके ऊपर पलट करके उनसे मजाक करते थे, उनसे इस्तेहजा करते थे। एक तरफ तो तुम कहते हो कि अल्लाह ताला जाने वाला है, और दूसरी तरफ जो है वो तुम हमें जो है खाना खिलाने को कह रहे हो, इन गरीब लोगों को, राइट, तो मजाक करते थे। और दूसरी रीजन क्या हो सकती है कि भाई अगर कोई मजाक ना भी करता हो उनमें से, तो वो जो है ना वो इस तरीके से ना लॉजिकली जो है वो फिर आगे से यानी क्वेश्चनिंग करता था, ठीक है, यानी कुछ बेवकूफ भी तो होते ना ऐसे कि जिनको के मजाक करना भी नहीं आता, तो फिर वो इस तरीके से क्वेश्चनिंग के, ये तो मेरे समझ में नहीं आ रही बात भाई, राइट, कि ये अल्लाह ताला जब रिस्क पहुंचाने वाला है तो फिर मुझे तुम कह रहे हो खाना खिलाने के लिए, इन अंतम इल्ला फी ज़लालिम मुबीन, ठीक है। तो फिर ये ईमान वालों को आगे से क्या कहते थे कि तुम लोग जो है ना बहुत ही सरी गुमराही के अंदर हो, यानी तुम तो भटके हुए लोग हो, तुम्हारी तो बात ही कोई यानी समझ ही नहीं है तुम्हारी बात के अंदर, योर नसीहत डज नॉट मेक सेंस टू मी, हम आज कहते हैं ना अंग्रेजी में यू डोंट मेक सेंस टू मी, ठीक है, तुम्हारी बात में तो कोई सेंस ही नजर नहीं आ रहा, कोई समझ ही ना मुझे नहीं आ रही। तो ये भी यही कहते थे ईमान वालों, ये जो हरकतें हैं ना ये कोई नई नहीं है, हमारे दौर की इजाद नहीं है, ये पहले से चली आ रही है, सुन्नतें तब्दील नहीं होती, ठीक है, शक्लें तब्दील हो जाती हैं लेकिन आदतें तब्दील नहीं होती, उसूल तब्दील नहीं होते। तो ये भी इसी तरह की बातें क्या करते थे कि तुम लोग जो है ना ये जैसे कहते हैं ना जी मौलवी लोग जो है ना इनको तो मुल्क हवाले नहीं किया जा सकता है, ये मुल्क चलाने आएंगे ना तो ये तो मुल्क नहीं चला सकते, ये तो बेड़ा गर्क कर देंगे मुल्क का, एज इफ जो मुल्क जो है वो अभी तक गर्क नहीं हुआ, राइट, तो मौलवी आकर के उसको बेड़ा, उसका बेड़ा गर्क करेंगे। तो इसी तरीके की बात होगी, मौलवियों को क्या बात समझ में आती है भाई? तो उस जमाने के जो ईमान वाले थे वो उस जमाने के मौलवी थे, आज के जो ईमान वाले राइट वो आज के मौलवी है। तो बाकी लोगों को तो अकीदे तक का पता नहीं होता कि अकीदा सही क्या है और गलत क्या है। जो उलमा से जुड़ के रहते हैं उन्हीं का अकीदा भी दुरुस्त रहता है। तो इस वजह से उलमाए कराम जो है वो उनके साथ आज भी लोग यही बातें किया करते हैं, क्या इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिम मुबीन, कि हम तो तुमको सरी गुमराही के अंदर देखते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ बातें लिखी जो कि हम किताब से ही पढ़ेंगे आपके सामने, पेज नंबर 396 के ऊपर के, एक मिनट है जीगा। आवाज आ रही है ना, कॉल आई थी फोन पर, तो कॉल से कभी अनम्यूट हो जाता है। ठीक, मैंने म्यूट हो जाता हूँ ठीक है। तो इसमें हज़रत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह पेज नंबर 396 के ऊपर लिखते हैं कि अल्लाह का रिस्क बास को बिलवास्ता मिलने की हिकमत। ठीक है, बिलवास्ता मतलब वास्ते के साथ मिलने की हिकमत क्या है? तो दूसरा मुकालमा जो ईमान वालों और काफिरों के दरमियान होता है वो ये है कि जब मुसलमान कुफार को गरीबों फकीरों की इमदाद करने और भूखों को खाना खिलाने के लिए कहते हैं कि खुदा ताला ने जो तुम्हें दिया है तुम इसमें से मोहताजों को दिया करो, तो ये लोग बतौर इस्तेहजा के कहते हैं कि जब तुम ये कहते हो कि राजक सब मखलूक अल्लाह ताला है और उसने उनको नहीं दिया तो हम क्यों दें? तुम जो हमें नसीहत करते हो कि हम उनको रिस्क दिया करें, तो ये तो तुम्हारी गुमराही है कि हमें राजक बनाना चाहते हो। ये कुफार भी अगरचे अल्लाह ताला के राज़िक होने का इकरार करते थे, जैसे कि कुरान करीम में है, वला इन सअलतहुम मन नज़ल मिन अस्समाई मान फअहया बिहिल अर्ज़ा मिन बाद मौतिहा लयकूलुनल्लाह, यानी अगर आप इन लोगों से पूछें कि आसमान से पानी किसने नाजिल किया जिससे जमीन में हयात नबाती पैदा हुई, यानी पौधे उगते हैं जिससे जमीन में और तरह तरह के फल फूल निकले, तो वो इकरार करेंगे कि ये पानी अल्लाह ही ने नाजिल किया। ठीक है, ये कुफार की बात हो रही है कि ये इकरार करते थे इस बात का, अल्लाह ताला की रज़ाकियत का। इससे मालूम हुआ कि ये लोग भी रज़ाक अल्लाह ताला ही को मानते थे, मगर मुसलमानों के जवाब में बतौर इस्तेहज़ा के ये कहा कि जब अल्लाह ताला राज़िक है तो वही गरीबों को भी देगा, हम क्यों दें? गोया इन अहमकों ने अल्लाह की राह में खर्च करने और गरीबों को देने को अल्लाह की रज़ाकियत के मुनाफी समझा, और ये ना समझा कि रज़ाक मुतलक का कानून हकीमाना ये है कि एक इंसान को देकर उसको दूसरों के लिए वास्ता बनाता है और बिल वास्ता दूसरों को देता है। अल्लाह ताला वास्तों के जरिए से दूसरों तक अपना रिस्क पहुंचाता है, अगरचे वो इस पर भी यकीनन कादिर है कि सबको खुद ही बिला वास्ता रिस्क पहुंचा दे, जैसा कि हैवानात में अमूमन इसी तरह हर कीड़े मकौड़े और दरिंदे परिंदे को बिला वास्ता रिस्क मिलता है। ठीक है, कोई ला करके नहीं खिलाता, जैसे हमें तो अब्बू ला के खिलाते हैं ना, और हमें जो है वो हमारा एम्प्लॉयर जो है वो सैलरी देता है, तो जानवरों में ऐसा होता है? जानवर तो खुद से या तो उन तक रिस्क पहुंच जाता है या खुद से जो है वो शिकार करके खा लेते हैं। जैसे कि हैवानात में इनमें कोई मालदार कोई गरीब नहीं, कोई किसी को नहीं देता, सब के सब कुदरती दस्तरखान से खाते हैं, मगर इंसानों में निज़ाम मईशत और बाहिमी तआवुन व तनासुर की रूह पैदा करने के लिए, ठीक है कि एक मईशत का निज़ाम जिसको इकोनॉमिक्स यानी इकोनॉमी कहते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं, और आपस में उनका एक सोशल स्ट्रक्चर बन सके, स्ट्रक्चर ह्यूमन सोसाइटी को डेवलप करने के लिए अल्लाह ताला की ये मर्जी थी। तो इसको डेवलप करने के लिए रिस्क पहुंचाने में बाज को बाज के लिए वास्ता बनाता है ताकि खर्च करने वाले को सवाब मिले। इसमें भी हमारा क्या फायदा है? आखिरत का फायदा है, खर्च करने वाले को सवाब मिले। अगर खर्च करने का कोई मौका ही ना होता तो सवाब से महरूम रह जाते, और जिसको दिया जाए वो उसका एहसान मंद हो, शुक्र करे जिसने उसको दिया है, और शुक्र करने वाला इंसान का शुक्र करने वाला ये परवरदिगार का शुक्र करने वाला भी होता है। ठीक है, वो हदीस आपके सामने भी पड़ी थी, मन लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्ला, जो इंसान का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। इसी को उलट कर लें, क्या मतलब कि जो इंसान का शुक्र अदा करता है वो अल्लाह का भी शुक्र अदा करता है, एज लॉन्ग एज उसको ये याद हो कि अल्लाह ने इस इंसान के वास्ते से मुझे रिस्क पहुंचाया। उस इंसान को राजक ना समझता हो, अल्लाह को राजक समझता हो, लेकिन इंसान का सबब बनने के ऊपर उसका शुक्र अदा करे, राइट? तो इसके ऊपर शुक्र करने पर इसको सवाब मिलता है, उसको खर्च करने पर सवाब, इसको शुक्र करने पर सवाब, एज लॉन्ग एज दोनों मोमिन हो। काफिर खर्च करेगा उसको भी सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अल्लाह को डिनाई करके खर्च कर रहा है, उसको भी सवाब नहीं मिलेगा खर्च करने पर, और लेने वाला अल्लाह को डिनाई करके शुक्र अदा कर रहा है देने वाले का, तो उसको भी सवाब नहीं मिलेगा। तो ईमान तो शर्त है सवाब के लिए दोनों तरफ, ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला ने निजाम बनाया सवाब का, ये देगा सवाब वो लेगा सवाब। सुभान अल्लाह, ईमान वाला हर हाल में फायदे में रहता है। तो फरमाया कि क्योंकि इंसानों का बाहिमी ताउन और तनासुर जिस पर सारा निज़ाम आलम कायम है, ये जब ही बाकी रह सकता है जबकि हर एक को दूसरे की हाजत हो। गरीब को मालदार के पैसे की हाजत है और मालदार को गरीब की मेहनत की ज़रूरत है। सर्विसेज इंडस्ट्री, गरीब सर्विस प्रोवाइड करता है, घर में आके काम काज करता है, दफ्तर में आपके आके आपकी नौकरी करता है, आपकी गाड़ी का ड्राइवर बनता है, आपके घर के अंदर सफाई करता है और मुख्तलिफ जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो ये सब जो है ये गरीब की तरफ अमीरों की मोहताजी है। अगर गरीब ना हो तो अमीरों के ये काम नहीं हो सकते। आप हर काम के लिए रोबोट्स नहीं बना सकते, हर काम के लिए मशीन्स नहीं बना सकते, ठीक है ना। आज से 100 साल के बाद अगर बन भी गई, बिलफर्ज बन भी गई, आज तो नहीं है ना, राइट? तो आज बगैर मशीनों का कैसे काम होगा और आज से पहले कैसे काम होता अगर ये गरीब ना होते। तो अल्लाह ने इंसानों को अमीर बनाया और अल्लाह ही ने इंसानों को गरीब बनाया। इसी को हमने कुछ अर्सा पहले बयानात में समझाया था कि ये एक तबकाती निज़ाम है जो कि अल्लाह का बनाया हुआ तबकाती निज़ाम है। ये तबकाती निज़ाम जो है ये अब्यूसिव नहीं है, ये अल्लाह ताला की तकदीर है और इसके अंदर इंसानों के लिए ये हिकमतें हैं जो कि हजरत ने समझाया इस तरीके से, ठीक है। तो इस तबकाती निज़ाम को हम ख़त्म करने की कोशिश नहीं कर सकते, ठीक है, इसकी इजाज़त नहीं है, और अगर कोशिश करेंगे तो हमेशा नाकामी हमारा मुंह देखेगी, हम कभी कामयाब नहीं हो सकते, इसलिए कि ये अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है, इस निज़ाम को कोई तोड़ नहीं सकता, ठीक है। तो फरमाया कि इनमें से कोई किसी से बेनियाज नहीं है, तो किसी को एहसान समझने की ज़रूरत नहीं कि मैं तो एहसान कर रहा हूँ उसके ऊपर कि मैं उसको दे रहा हूँ, और ना गरीब को समझने की जरूरत है कि मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके एहसान कर रहा हूं उसके ऊपर, ठीक है भाई, अल्लाह ताला एहसान कर रहे हैं हर एक के ऊपर। हम तो मोहताज हैं, अल्लाह के भी और दूसरे इंसानों के भी मोहताज हैं। इस तरीके से इंसान सोचे तो वो कभी मुतकब्बिर नहीं हो सकता, वो हमेशा उसके अंदर आजजी इंकिसारी रहेगी। गौर करें तो किसी का किसी पर एहसान भी नहीं, हर शख्स जो कुछ किसी को देता है वो अपने मतलब के लिए देता है। कौन सा मतलब? ये था ना मतलबी होना कोई बुरी बात भी नहीं है, एज लॉन्ग एज आपका मतलब जो है ना वो अच्छा मतलब हो, तो मतलबी होना बुरी बात नहीं है, ठीक है। एक ईमान वाला किस मतलब से नेकी का काम करता है? आखिरत के मतलब से नेकी का काम करता है, उसका भी मतलब पोशीदा होता है इसके अंदर, उसको इसके एवज किसी चीज की उम्मीद होती है नेकी के एवज, राइट, और होनी जरूरी है उसको। अगर वो नेकी की उम्मीद पर नेकी नहीं कर रहा तो उसकी नेकी का उसको कुछ भी सवाब नहीं मिलेगा, राइट। तो मतलब होना कोई बुरी बात नहीं है, मतलब होना अच्छी बात है, लेकिन किसी को एक्सप्लॉइट करना, नेकी करना इस तरह से कि उसकी इज्जत नफ्स मजरूह हो, उसको जलील किया जाए, राइट, इसके ऊपर गुनाह मिलता है, अज़ाब मिलता है अल्लाह ताला का। तो मतलब अच्छा होना ये हमारा मकसूद है, कोई बगैर मतलब के नहीं करता इस दुनिया में, कोई बगैर मतलब के काम नहीं करता। कौन है जो कि बगैर मतलब के काम करता है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है जो बगैर किसी मतलब के काम करती है। इसलिए कि हम अल्लाह ताला के कितने ही नेक बंदे बन जाएं, कितनी ही इबादतें कर लें, अल्लाह ताला के खजाने में कोई इजाफा नहीं कर सकते, अल्लाह ताला की इज्जत में इजाफा नहीं कर सकते हम अल्लाह की इबादत करके, अल्लाह का शुक्र अदा करके हम अल्लाह की इज्जत में कोई इजाफा नहीं कर सकते, अल्लाह को कुछ नहीं मिलता हमारी इबादत से। اللہ کو کچھ نہیں ملتا ہمارے شکر ادا کرنے سے، اور اگر ہم کفر کریں گے تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ صرف اور صرف ہمارے پروردگار کی ذات ایسی ہے جو کہ بغیر مطلب انسان سے محبت کرتا ہے، جو کہ بغیر مطلب کے انسان کو یہ نعمتیں ڈھیر ڈھیر کر کے دیتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی ذات ایسی نہیں ہے۔ رہا یہ سوال کہ مسلمانوں نے کفار کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم کس بنا پر دیا، کس بنا پر دیا جبکہ ان کا ایمان ہی اللہ پر نہیں، اور بتصریح فقہا وہ احکام فرعیہ کے مخاطب بھی نہیں، سو اس کا جواب واضح ہے کہ مسلمانوں کا یہ کہنا کسی تشریعی حکم کی تعمیل کرانے کی حیثیت سے نہیں ہے، بلکہ انسانی ہمدردی اور شرافت کے مروجہ اصول کی بنا پر تھا۔ ٹھیک ہے کہ بھئی یہ تو ابھی ایمان والے ہی نہیں ہیں تو یہ ان کو خرچ کرنے کا کیوں کہا جا رہا ہے؟ پہلے تو ایمان کی دعوت دینی ہوتی ہے کہ ایمان والے بنیں گے پھر خرچ کرنے سے ان کو فائدہ ہوگا۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ کوئی تشریح یعنی شریعت کے حکم کے طور پر نہیں دیا جانا تھا کہ ابھی تم ایمان والے بن چکے ہو، اب جو ہے وہ شریعت کہتی ہے کہ تم خرچ کرو، بلکہ یہ ایک جنرل ہیومن ریلیشن شپس یا جو ہمدردی اور شرافت کی بنیاد پر ان کو ایک ترغیب دی جا رہی تھی کہ بھئی وہ اس طرف دھیان کریں، ان کو یہ پتہ لگے کہ بھئی مسلمان جو ہیں وہ ان کو ہماری خیر خواہی ہے، اور جو غریب ہیں ان کی خیر خواہی مسلمانوں کے دل میں، تو شاید کہ ان کے دل میں کوئی یہ ایک روشنی پیدا ہو جائے کہ بھئی ہم بھی اگر مسلمان ہوتے تو ہم بھی ایسی خیر خواہی کرنے والے بن جاتے۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے یعنی اس کو سمجھایا جائے گا کہ یعنی جو مسلمان نصیحت کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے یہ اس کے اندر ٹیک ہوم پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں نا، تو ان نعمتوں کو ہم ان مقاصد میں خرچ کریں جن مقاصد میں خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور اس خرچ کرنے کو ہم اپنی سعادت سمجھیں، ہم ان کی محتاجی نہ سمجھیں کہ جی وہ محتاج ہیں، ان پر ترس کھا کر کے ہم خرچ کر رہے ہیں۔ ہمارا دین ترس کھانا نہیں سکھاتا، ہمارا دین جو ہے نا وہ اللہ کی رضا کی نیت سے خرچ کرنا سکھاتا ہے۔ کافر ترس کھا کر کے دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا دل پسیج جاتا ہے تو وہ خالی دل پسیجنے کی وجہ سے دیتا ہے۔ دل تو مومن کا بھی پسیجتا ہے، لیکن مومن کی جو نیت ہے نا وہ نیت ہر چیز پر غالب رہتی ہے۔ دل اس کا غریب کی حالت کو دیکھ کر کے نرم ہوتا ہے، پسیجتا ہے، لیکن جب وہ دیتا ہے تو اس وقت وہ نیت کر لیتا ہے کہ میری یعنی میں اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں، آخرت کی جزا کے لیے دے رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے ایمان والے کے لیے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اگر وہ یہ نیت نہیں کرے نا تو پھر بھی اتنا تو آسانی ہے ایمان والے کے لیے کہ اگر وہ ایکسپلیسٹ نیت نہ کرے، ٹھیک ہے نا، ایکسپلیسٹ نیت کا مطلب کیا کہ باقاعدہ ذہن میں یہ خیال لے کر کے آئے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں، آخرت کی جزا کے لیے دے رہا ہوں، بلکہ وہ امپلیسٹلی بس کافر کی حالت کو دیکھ کر کے اس پہ ترس کھا کر کے اور اس پہ رحم کھا کر کے جو ہے اس کو دے دے، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کو ثواب تو پھر بھی مل جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پر ایمان تو اس کا ہے نا، ٹھیک ہے نا، ایمان تو ہے تو اس کو ثواب تو مل جائے گا، لیکن یہ ثواب جو ہے نا، یہ ثواب جو ہے یہ سیکیور نہیں ہوگا۔ سیکیور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ محفوظ۔ یہ ثواب محفوظ نہیں ہوگا۔ کیوں محفوظ نہیں ہوگا؟ اس کا آپ جواب دیں۔ اگر اس نے ایکسپلیسٹ نیت نہیں کری بلکہ امپلیسٹلی کسی کے اوپر ترس کھا کر کے دے دیا تو اس کا ثواب تو اس کو مل گیا، کیونکہ ایمان والا تو وہ ہے، لیکن یہ ثواب محفوظ نہیں ہے۔ کیسے محفوظ نہیں ہے جی؟ جی آپ کی فیڈ بیک چاہیے، یہ ثواب محفوظ کیسے نہیں ہے؟ خالی ایک لفظ نیت دے تو میں خود اتنی دیر سے کہیں چلے آ رہا ہوں۔ پرائیویٹلی جواب نہ دیں، سلیکٹ کریں ایوری ون، ٹھیک ہے، چار پنڈوں میں ایوری ون سلیکٹ کر کے پھر جواب دیکھیں تاکہ دوسروں کو بھی آپ کا جواب نظر آئے۔ اس کی نیت صاف نہیں تھی۔ بھائی صاف کیسے نہیں تھی؟ اس نے ترس کھایا تو ترس کھانا کوئی گندی نیت تو نہیں ہے نا۔ انما الاعمال بالنیات، یہ ٹھیک ہے بات، نیت यानी मैं ये बात आपसे पूछ रहा हूँ कि जो उसको सवाब मिला ये सवाब महफूज क्यों नहीं है, बाद में नीयत चेंज हो सकती है। अच्छा, नीयत की वजह से इखलास नहीं, ये सब सही नहीं है जवाब। अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। भाई हम बुरी नीयत नहीं कह रहे, उसने कोई बुरी नीयत से नहीं दिया है, उसने एक अच्छी नीयत से दिया है कि बंदा परेशान है, बंदा जो है वो तकलीफ में है, तो मैं उसकी हेल्प कर देता हूँ, ये बुरी नीयत तो नहीं है। तो सवाब उसको मिल गया, अगर उसकी नीयत बुरी होती तो सवाब नहीं मिलता उसको, सवाब नहीं मिलता। हम आपको ये बता रहे हैं कि सवाब उसको मिल चुका है, लेकिन ये सवाब महफूज क्यों नहीं है, इसका जवाब किसी ने भी नहीं दिया अभी तक। भाई महफूज का मतलब, महफूज ना होने का मतलब क्या है? कोई चीज महफूज नहीं होती, ठीक है ना, सिक्योर्ड नहीं होती, तो फिर उसके उस चीज के साथ क्या होता है, क्या होता है जी? आप अपने डायमंड रिंग को जो है ना वो बाहर सड़क पे रख दें, तो फिर क्या होगा उसके साथ? महफूज नहीं है आपकी डायमंड रिंग, तो होगा क्या फिर डायमंड रिंग के साथ? डायमंड रिंग की बात करें, चले सवाब आप छोड़ें, डायमंड रिंग ज्यादा समझ में आएगी आप लोगों को, खवातीन को। वो रख देना सड़क के ऊपर आज जा करके, फिर क्या होगा उस डायमंड रिंग के साथ? सवाब नेकी, नेकी का जो अमल है उसका जो सवाब होता है ये डायमंड रिंग से कम तो नहीं होता, राइट? तो डायमंड रिंग को कैसे महफूज करती हैं, और अगर महफूज ना करें तो क्या होता है उसके साथ? आखिरत की नीयत पे अल्लाह की तरफ से अजर का वादा है। कोई भी उसको वो चट लेगा, राइट? डायमंड रिंग को कोई छोड़ेगा तो नहीं ना, जो रास्ता चलता हुआ उचक्का होगा, डाकू होगा, चोर होगा, वो डायमंड रिंग को उठा के ले जाएगा, राइट? तो महफूज तो ना हुई ना आपकी डायमंड रिंग जब आपने उसको सड़क पर रख दिया, उसी तरीके से चोरी हो जाएगी ना, स्टोलन, इट कैन बी लॉस्ट, राइट? तो कौन जी नेकी का सवाब कौन चुराता है? खत्म हो जाती है, गुम हो जाएगी, गुम नहीं हो जाएगी, चोरी हो जाएगी। पड़ी पड़ी हुई चीज होती है वो ऐसी गुम नहीं हो जाती, आपको पता है आपने कहाँ जा करके रखा है, तो गुम कैसे हो जाएगी? चोरी हो जाएगी, दुनिया में उसका बदला नहीं, चोरी, अल्लाह की रजा के लिए देना, गुम हो जाएगी शैतान। तो कौन नेकी का सवाब कौन चुराता है? शैतान चुराता है, ठीक है? तो शैतान कैसे चुराएगा भाई आपकी नेकी का सवाब? नफ्स से हिफाजत का इंतजाम नहीं किया, ठीक है? अच्छा जवाब है, तो थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे। नफ्स कैन टेक क्रेडिट फॉर दिस नेकी। अच्छा भाई, तो भाई जब आपने एक्सप्लिसिटली ये नेकी नहीं, ये नियत नहीं करी कि मैं अल्लाह की रजा के लिए दे रहा हूं, मैं आखरत की जजा के लिए दे रही हूं इसको, ठीक है? तो शैतान आकर के बाद में आपके दिल में वसवसे डाल सकता है ना कि भाई तुमने खामखाई दे दिया, ये तो पता नहीं मुस्तहिक था भी कि नहीं, राइट? और कभी अल्लाह ताला आजमाइश में मुबतला कर देते हैं कि जिसको आपने मुस्तहिक समझ के दिया वो भाई साहब जो है वो पहले तो लंगड़े नजर आ रहे थे, फिर जो है ना वो अच्छे खासे दोनों टांगों पे चलते हुए नजर आना शुरू हो गए, ठीक है? तो फिर क्या होगा, है? फिर क्या होगा जब वो लंगड़े साहब जिनको आपने दिया था तर्स खा करके वो आपको दोनों टांगों पे चलते हुए नजर आना शुरू हो गए, जैसा कि होता है अक्सर फकीरों के साथ, तो फिर क्या क्या होगा, शैतान क्या करेगा फिर उसके बाद? शैतान जो है नफ्स कैन टेक द क्रेडिट, नहीं, नफ्स से हिफाजत इंसान नहीं है, नीयत खराब करके रियाकारी आ जाएगी। हाँ, रियाकारी भी आ सकती है, तकब्बुर दिल में आ जाएगा, तकब्बुर भी आ सकता है, ठीक है? तो शैतान जो है ना जब आपको वो नजर आएगा ना, अल्लाह ताला दिखलाएंगे कि फकीर साहब की तो टांगे ठीक थी, तो उस वक्त शैतान आ करके आपको गुस्सा दिलाएगा, गुस्सा कि ये मैंने क्या कर दिया, ये नहीं करना चाहिए था, और ये जो फरीकी फकीर लोग होते हैं ये तो सारे के सारे धोखेबाज होते हैं, ये तो मक्कार होते हैं, ये होते हैं, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, तो ये शैतान जो है वो आइंदा आपको खर्च करने से रोक देगा। और ये जो नेकी आपने करी थी, इस नेकी का सवाब जो है आपकी इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से, जो बुरे बुरे कलिमात दिल से निकाले, मुंह से निकाले, इनकी वजह से वो सवाब जाया करवा देगा, चोरी कर लेगा उस सवाब को, ठीक है? या इन अदर वर्ड्स, आपने अपने किसी रिश्तेदार को दिया, इन अनदर एग्जाम्पल, आपने अपने किसी रिश्तेदार को दिया उसकी हालत पे तरस खा करके, लेकिन आपने एक्सप्लिसिटली अल्लाह की रजा और जन्नत की जजा की नियत नहीं करी, तो वो रिश्तेदार उमूमन क्या होता है, बाद में वही रिश्तेदार जो होता है वो आपके खिलाफ पलट जाता है, राइट, दूसरे रिश्तेदारों में बैठ करके आपकी बुराई करना शुरू कर देता है। तो जब वो बुराई करेगा तो उस वक्त जो है वो आप अफसोस करेंगे कि काश मैंने उसको दिया ही ना होता, इसने तो मेरी ही थाली में खा करके मेरी थाली में ही सुराख करना शुरू कर दिया, काश कि मैंने उसको ना खिलाया होता। क्या हुआ, वो जो नेकी करी थी उसका सवाब तो मिल गया था, लेकिन इस सवाब को सिक्योर तो नहीं किया ना, इसकी हिफाजत नहीं करी। अगर अल्लाह की रजा, जन्नत की और आखिरत की जजा की एक्सप्लिसिट नियत कर लेते तो ये सवाब सिक्योर हो जाता, क्योंकि अब वो आपकी तारीफ करे या आपकी बुराई करे बैठ करके आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने उसकी तारीफ की वजह से तो नेकी नहीं करी थी, आपने तो अल्लाह की रजा के लिए नेकी करी थी। तो अगर ऐसा मामला हो जाएगा तो आपकी नेकी का सवाब फिर भी सिक्योर रहेगा, फिर भी महफूज रहेगा। तो ये फर्क होता है एक्सप्लिसिट नियत करने और एक्सप्लिसिट नियत ना करने में। ईमान वाले को नेकी का काम करने से हर सूरत सवाब मिल जाता है, लेकिन जो नियत नहीं करता, सनाहतन एक्सप्लिसिट नियत नहीं करता, वो महफूज नहीं कर पाता अपनी नेकी को, वो अपनी नेकी को महफूज नहीं कर रहा होता। इसी वजह से ये जो इस्लाह का सिलसिला होता है ना, जो अल्लाह वालों की सोहबत में रह करके मशायख की रहनुमाई में अपनी इस्लाह करी जाती है, तज़किया नफ्स किया जाता है, तस्फिया कल्ब किया जाता है, इसका एक बड़ा फायदा क्या होता है कि हम एक्सप्लिसिटली नियत करने वाले बन जाते हैं, ठीक है, इस्तेहजार हासिल हो जाता है, ध्यान हासिल हो जाता है, अपने दिल की तरफ ध्यान मुस्तकिल रखने वाला बंदा बन जाता है। अब वो जो नेकियां करता है ना, वो पहले की तरह नेकियां नहीं कर रहा होता, अब उसकी नेकियां जो होती हैं वो महफूज नेकियां होने शुरू हो जाती हैं, बन जाती हैं महफूज, शैतान के वसवसों से और इन तमाम मामलात से वो अपनी नेकियों को बचा लेता है। ये फर्क होता है, ठीक है, वरना तो मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह सभी हैं और सभी नेकियां कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन फर्क है ना, नियत बदल जाएगी, बदगुमानी आएगी। इसलिए क्या अकाबिर ने फरमाया कि उम्मत का मसला बदनीयती नहीं, बेनीयती है। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बात आपने यहाँ पे हमें याद दिलाई है, बिल्कुल ऐसा ही है। उम्मत का मसला अक्सर, सबका नहीं, बिकॉज बदनीयती अनफॉर्चुनेटली है, लेकिन अक्सरियत की बात होती है ना, लिल अक्सर हुक्मुल कुल, तो अक्सर का मसला जो है वो बदनीयती नहीं है कि हम बदनीयती से काम नहीं करते, हम तो बड़ी बातें करते हैं, हम तो बड़ी जो है वो यानी नेकी काम कर रहे होते हैं, बड़ा खर्च कर रहे होते हैं, लेकिन बेनियती है, हम एक्सप्लिसिट नियतें नहीं करते, इस वजह से हमारी नेकियां जो होती हैं वो महफूज नहीं हो पाती, शैतान जो है वो हमारे ऊपर गालिब आ जाता है, नफ्स हमारे ऊपर गालिब आ जाता है, हमें महरूम कर देता है, ठीक है। तो इस वजह से सआदत समझ करके देना भी चाहिए, और उसी तरीके से हमें बंदों का शुक्र भी जो है वो अदा करना चाहिए जिन्होंने हमें दिया है, लेकिन ये भी जो है वो अल्लाह ताला ही की तरफ निगाह रख करके कि असल में तो अल्लाह ताला ने इनके जरिए से पहुंचा है। तो जब रोटी का एक लुकमा देने के लिए हमें बंदों का शुक्र गुजार बनाया गया, ठीक है, तो जिन्होंने हमें रोटी के कितने लुकमे खिलाए उनका कितना शुक्रगुजार होना चाहिए, और जिन्होंने हमें दीन की तालीम दी, दीनी बातें बताई, दीनी नुकसानात से बचाया, उनका कितना शुक्रगुजार होना चाहिए। तो ये उलमा और मशायख जो होते हैं, राइट, तो ये हमें आखिरत के नुकसान से बचाने की फिक्र करते हैं, आखिरत के फायदे की चीजें हमें बता रहे होते हैं, तो फिर हमें कितना मशकूर रहना चाहिए उनका, ठीक है। तो इस वजह से अपने बड़ों के बारे में हमें बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है, क्योंकि हम उनके एहसानात के बोझ तले दबे हुए हैं, अगर हम उनका शुक्र अदा नहीं करेंगे ना, तो फिर हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने वाले हरगिज नहीं बन सकते। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो यकूलूना मता हादल वादु इन कुंतुम सादिकीन, और कहते हैं कि कब होगा ये वादा अगर तुम सच्चे हो। तो ये जो काफिर हैं, ये मोमिनों से अंदाज में इस्तेहजा और दिल लगी के तौर पर ये सवाल किया करते थे, ठीक है। तो ये जो सवाल करना है कि भाई ये जो तुम जिस कयामत के दिन का हमें बता रहे हो, ये कब होगी, متا حاد الوعد، یہ وعدہ کب وقوع پذیر ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو بھائی بتاؤ نا صحیح کب ہوگا. تو یہ جو سوال کرتے ہیں، یہ سوال جو تھا یہ بد نیتی کے ساتھ سوال تھا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ کوئی آخرت پہ یقین تو رکھتے نہیں تھے، مانتے تو تھے نہیں بات کو. تو اب یہ سوال کرنا جو ہے نا، یہ صرف جو ہے وہ چھیڑ خانی کے لیے ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے اس سوال کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بالکل ریجیکٹ کر دیا پہلی بات، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے سوال کرنا جو ہے نا، علم کی نیت سے اگر ہو تو یہ چیز بالکل بھی ڈسکرج نہیں ہے ہمارے دین میں، بلکہ اس کو ہائیلی انکریج کیا جاتا ہے سوال کرنے کو، ٹھیک ہے؟ لیکن علم کی نیت سے، اچھی نیت سے. حسن السوال نصف العلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا سوال یعنی اچھی نیت کے ساتھ جو سوال کیا جائے یہ تو آدھا علم ہوتا ہے، جب جواب ملے گا تو باقی آدھا علم بھی مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اتنا زیادہ سوال کو انکریج کیا گیا، لیکن یہاں پر جو یہ سوال کرتے تھے یہ بد نیتی سے سوال کرتے تھے، تو اس وجہ سے اس کو بالکل ریجیکٹ کر دیا. لیکن قیامت کا معاملہ ایک ایسا اسپیشل معاملہ ہے کہ اس کے بارے میں اگر کوئی اچھی نیت سے بھی سوال کرے نا کہ کب ہوگی، ٹھیک ہے، تو اس کا بھی جواب نہیں دیا گیا. جیسے کہ صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کے کبھی پوچھ لیا کرتے تھے کہ اے اللہ کے نبی کب یہ قیامت ہوگی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جواب نہیں دیا، اس لیے کہ قیامت کے دن کے وقت کو اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھا ہے، کسی کو بھی نہیں بتایا، ٹھیک ہے؟ نہ عام لوگوں کو تو دور کی بات، خواص کو بھی نہیں بتایا، حتیٰ کہ انسانوں کو دور کی بات، فرشتوں کو بھی نہیں بتایا. اسرافیل علیہ السلام کو بھی نہیں پتا کہ کب حکم ہوگا سور پھونکنے کا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور اس کے اندر بڑے فائدے ہیں ہمارے، ٹھیک ہے؟ مشائخ نے باقاعدہ لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ اگر ہمیں بتا دیا جاتا نا تو پھر یہ ہمارے لیے مصیبت بن جاتی. مثال کے طور پر اگر آج آپ کو بتا دیں کہ جی آپ نے کل جو ہے وہ چلے جانا ہے اس دنیا سے، تو پھر اس کے بعد کیا حالت ہوگی ذرا تصور کریں. کینسر کے مریض کو جب بتا دیا جاتا ہے کہ جی آپ کے پاس 4 مہینے رہ گئے، تو پھر کینسر کے مریض کی حالت دیکھیں نا، اکثر لوگ جو ہیں وہ تو ویسے ہی مر جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ یعنی مرنے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں. وہ جو بہت ایمان والے ہوتے ہیں تو پھر وہ ان 4 مہینوں کو استعمال کر لیتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ موت کے وقت کا پتہ چل جانا یہ یعنی بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے نا. تو قیامت جو ہے وہ بھی تو موت ہی ہے نا، دنیا کی موت، جتنے لوگ اس وقت زندہ ہوں گے ان کی موت قیامت کی موت، قیامت کا وقت ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور ساری دنیا اور آخر یعنی جہانوں کے لیے جو موت ہے وہ قیامت کے دن کی موت ہے. تو موت از ایکول ٹو قیامت، ٹھیک ہے؟ نہ ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہماری موت کا وقت بتایا، اور نہ جو ہے وہ انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کا وقت بتایا. تو یہ دونوں ریزنز ہیں کہ اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا. اللہ تعالیٰ بس یہ فرماتے ہیں، ما ینظرون الا صیحۃ واحدۃ تأخذہم وہم یخصمون، کہ یہ تو راہ دیکھتے ہیں. نظر ینظرون کا مطلب دیکھنا، ٹھیک ہے، نظر کرنا. تو یہ لوگ جو ہے نا، تو یہ تو بس راہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو بار بار پوچھ رہے ہیں نا، تو گویا یہ لوگ جو ہے بس منتظر ہیں، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں نا یہ بس ذرا ویٹ کرو، ابھی آنے والی ہے جو جس چیز کا تم اتنا زیادہ پوچھ رہے ہو نا، ٹھیک ہے؟ جیسے فار ایگزامپل آپ بچوں کے ساتھ اگر ٹرین کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوں، ٹھیک ہے نا، اور ٹرین آنے میں ابھی کچھ ٹائم باقی ہو نا، تو بچوں نے پہلی دفعہ ٹرین کا سفر کرنا ہوتا ہے نا، تو وہ بار بار پوچھتے ہیں ابو ٹرین کب آئے گی، امی ٹرین کب آئے گی، ٹرین کب آئے گی، ٹرین کب آئے گی، ٹھیک ہے نا. تو آپ کبھی ان کو ہوتا ہے کہ بھائی ٹائم کا تو ان کو پتہ ہے نہیں، آپ ان کو بولیں 12:30، تو 4 سال کے بچوں کو کیا پتہ جی 12:30 کیا چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کو کہتے ہیں بس آنے والی ہے، آنے والی ہے، آنے والی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بس تھوڑا سا ویٹ کر لو، تھوڑا سا ویٹ کر لو، آنے والی ہے. وہ ٹائم نہیں بتاتے، آپ اس کو ٹائم نہیں بتاتے، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم سن کر کے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کو تو ٹائم کا احساس ہی نہیں ہے، اس کو تو شعور ہی نہیں ہے کہ یہ 12:30 کیا چیز ہوتی ہے. تو کہتے ہیں بس ویٹ ویٹ ویٹ، ٹھیک ہے نا، اٹس کمنگ، آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ینظرون، یہ لوگ یار ویٹ کرو بس، تم جس چیز کے اتنے منتظر ہو نا، آنے والی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز جو ہے کیا ہے سوائے اس کے کہ الا صیحۃ واحدۃ، بس ایک چنگھاڑ ہوگی. صیحہ جو ہے وہ چنگھاڑ، یعنی اتنی بڑی چیخ جس کو کہ ہم چنگھاڑ کہتے ہیں، دہاڑ جیسے ہوتی ہے نا، شیر کی دہاڑ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے کچھ جانور ہوتے ہیں تو ان کی جو بہت زور کی آواز ہوتی ہے اس کے لیے چنگھاڑ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ ایک بہت زوردار آواز ہوگی، تأخذہم، یہ آواز ان کو آ کے پکڑ لے گی، आवाज पकड़ लेने का मतलब क्या, जैसे पीछे भी बात हो चुकी है कि ये साउंड वेव्स होती हैं, साउंड वेव्स का इंसान के ऊपर असर होता है, मेंटली असर होता है, स्पिरिचुअली असर होता है, हत्ता के फिजिकली असर भी होता है। सिर्फ साउंड वेव्स हैं, तो साउंड वेव्स की कितनी इंटेंसिटी है, क्या उसकी नेचर है, राइट, क्या चीजें उस साउंड वेव के अंदर चल के आ रही हैं आपके पास, कौन से कलिमात, सूरह या सूरह रहमान की तिलावत से कैंसर का इलाज सुना होगा ना आपने, आजकल तो बहुत ज्यादा कैंसर भी हो रहा है, तो अल्लाह ताला ने सूरह रहमान के जरिए से कैंसर का इलाज भी, तो वो सूरह रहमान जो पढ़ी जाती है, बल्कि रिकॉर्डेड, उसका इलाज कैसे करते हैं, रिकॉर्डेड होता है ना सूरह रहमान, कहते हैं जी कि वो कारी अब्दुल बासित की आवाज में सूरह रहमान पढ़ना, सूरह रहमान की रिकॉर्डिंग सुनना, तो उस कारी अब्दुल बासित को अल्लाह के वली सामने तो नहीं बैठे हुए हैं कि वो पढ़ के फूंक रहे हैं तो उनके मुंह से जो है वो बाबरकत फूंक निकल रही है जिसकी वजह से आके आपकी कैंसर दूर हो जाएगा, वो तो उनको तो दुनिया से गए हुए कितने साल हो चुके हैं, उनकी रिकॉर्डेड आवाज है, वो आप टेप रिकॉर्डर में प्ले करते हैं तो उससे सूरह रहमान की जो आ रही है तो उससे आपके कैसे कैंसर दूर हो जाता है, राइट। तो वो कारी अब्दुल बासित का इसमें कोई अमल दखल नहीं होता। उनका नाम क्यों लिया जाता है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनकी जो तिलावत है ना वो बेहतरीन तिलावत है, वो तजवीद की और किरत की गलतियां नहीं करते अपनी तिलावत में, तो इस वजह से एहतियातन कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद का नाम लिया जाता है, ताकि वो जो सूरह रहमान के अल्फाज की साउंड वेव्स जो मरीज के कान से उसके अंदर दाखिल हो, ये गलत तिलावत ना हो, तो आप उसके लिए किसी और तारीख को भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी की तजवीद के ऊपर आपको 100% भरोसा हो, एतमाद हो, चाहे वो आज के दौर का कारी हो, चाहे वो जिंदा कारी हो, चाहे वो कोई रिकॉर्ड तिलावत हो, ठीक है। तो इन आवाज से फिजिकल तब्दीली आ रही है इंसान में, जो कैंसर के ट्यूमरस सेल्स होते हैं, ठीक है, जो ट्यूमर होता है हमारी बॉडी के अंदर कैंसर का, वो ट्यूमर अल्लाह ताला खत्म करवा देते हैं, तो ये क्या चीज है, ये नफसियाती इलाज नहीं है, ये रूहानी इलाज नहीं है, ये मादी इलाज है, फिजिकल इलाज है, और कैसे हो रहा है, साउंड वेव्स के जरिए से हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये चिंगाड़ जो है ना, ये ऐसी साउंड वेव्स होंगी कि इससे जो है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, फट जाएगा, फिजिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो तअखुज़ुहुम, ये इनको ऐसे पकड़ेगी कि मार देगी इनको, वहुम यखसिमून, और इनका क्या हाल होगा कि इनको पता भी लगेगा कि जी उधर से जो है वो साउंड वेव्स हमारी तरफ आ रही हैं, ठीक है। ये आपस में ना वही जो इनकी आदतें हैं, क्योंकि उस वक्त जो है दुनिया में सिर्फ काफिर रह जाएंगे, ईमान वाले तो खत्म हो जाएंगे उससे पहले ही, ठीक है। तो ये काफिर जो है वो अपने दुनिया के और काम भी कर रहे होंगे, जैसे कि हदीस भी आगे जिक्र की है कि कोई जो है वो अपने बकरी का दूध धो रहा होगा तो वो दूध धोते धोते ही जो है वो सूर आकर के उसको पकड़ लेगी, कोई जो है वो अपने हौज के को जो मिट्टी से लेप कर रहा होगा, कोई जो है वो अपने कपड़ों को फैलाया हुआ होगा, ठीक है, कि वो कपड़े तय करने से पहले ही सूर की आवाज जो है ना उसको मार देगी आकर के, ठीक है ना। तो ये इस तरह के काम चल रहे होंगे दुनिया में, और उसी तरीके से काफिर जो है वो आपस में जो लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, जो कि काफिरों की सिफत होती है, तो वो लड़ाई झगड़ा कर रहे होंगे, तो उसी को अल्लाह ताला ने फरमाया वहुम यखसिमून, का आपस में झगड़े कर रहे होंगे, जैसे इन लोगों की आदत है झगड़े करने की, ठीक है। तो सूर जो है वो आकर के इनको खत्म कर देगी, फला यस्तुतीउना तौसियतन वला इला अहलिहिम यरजिउन, फिर ना कर सकेंगे कि कुछ कह ही मरें, यानी कुछ वसीयत कर जाएं, तौसियत का मतलब क्या, वसीयत करना, तो इनको इस्तेताअत नहीं होगी इस बात की कि ये कुछ वसीयत ही कर जाते, ठीक है, कि भाई मेरे मर हम कहते हैं ना मरने के बाद की फलाना इसको दे देना, वो उसको दे देना, और ये ऐसे कर लेना और ये वैसे कर लेना, मेरे बाद जो है वो मुझे याद रखना, उस वक्त किसी को वसीयत करने का टाइम नहीं मिलेगा, वला इला अहलिहिम यरजिउन, और ना जो है वो इस मौत के बाद फिर अपने अहलो आयाल की तरफ वापस लौट सकेंगे, जैसे कि हम भी जब मर जाएं तो हम भी अपने अहलो आयाल की तरफ वापस नहीं लौट सकेंगे, उसी तरीके से कयामत की मौत जो मरेगा तो वो भी अपने अहलो आयाल की तरफ लौट नहीं सकेगा। तो यहाँ पर एक रुकू खत्म हो गया, तो क्लास भी आज के हम यहीं पर रोकते हैं, अगर किसी को कोई सवाल है तो पूछ लें, अदरवाइज क्लास में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह की क्या डॉक्टर्स भी साउंड वेव्स यूज करते हैं कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, ये किसी ने प्राइवेटली लिख दिया है, या प्राइवेटली ना लिखा करें, सारी खवातीन है इस क्लास के अंदर, खैर। तो हाँ, मैंने सुना है कि कुछ डॉक्टर्स भी अब ये कर रहे हैं, ठीक है, तो अगरचे कि ये उनको क्योंकि मेडिकल मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता, ये उनकी जो ट्रीटमेंट मेथड है उसमें साउंड वेव्स की ट्रीटमेंट जो है वो शामिल नहीं है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली एक्चुअली मुझे इल्म नहीं है। सच्ची बात तो ये है कि साउंड वेव्स मुतलकन के किसी किस्म की साउंड वेव्स को यूज़ करके वो इलाज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये तो हो सकता है मेडिकल साइंस कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रही हो, कोई ना कोई रिसर्च चल रही हो उसके ऊपर। मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि मैंने सुना ये है कि कुछ नॉन मुस्लिम डॉक्टर्स कुरान की तिलावत सुना करके अपने पेशेंट्स का अपने हॉस्पिटल्स में इलाज कर रहे हैं। यूके के एक डॉक्टर का, किसी पाकिस्तानी डॉक्टर ने बताया कि उनके जो क्लिनिक है ना वो मशहूर है कि वहां पर जाते हैं लोग और शिफायाब होके निकलते हैं, और उसकी क्लिनिक यानी उसका जो एक्चुअली वार्ड है, वार्ड उसके हॉस्पिटल का, ठीक है, तो उस वार्ड में उसने मुस्तकिल सूरह रहमान की और कुछ और सूरतों की तिलावत जो है वो प्ले करके रखी हुई होती है, ठीक है, और वो किसी को कुछ नहीं बताता। वो कहता है कि मैं किसी को कुछ नहीं कहता, आई एम नॉट सेलिंग एनी रिलीजन हियर, मैं यहाँ पे कोई दीन यहाँ पे नहीं प्रमोट कर रहा हूँ, बस मैं किसी को कुछ कहे बगैर, हाँ अलबत्ता जब मैं मर जाऊंगा ना तो मैं कुछ लिख करके जाऊंगा कि मैं क्या करता था। तो ये उसकी बातें हैं, किसी पाकिस्तानी डॉक्टर ने बताई हैं, ठीक है, तो इवन दिस इज हैपनिंग, तो वो जो प्ले करता है वो साउंड वेव्स ही होती है ना। ठीक है, फिर अस्सलाम वालेकुम।